प्रिय भक्तजन, मेरी प्यारी बहनों एवं भाइयों, बच्चों, आज 17 जून 2020 का दिन आप सब के लिए मंगलमय हो। मैं श्री महाराज जी की लीला प्रसंग को सुनाने से पहले चाहती हूँ कि मैं आपको श्रीमद् भागवत का श्लोक सुनाऊं। तब कथा अमृतम तप्त जीवनम कवि भैरितम कलम शाप हम श्रवण मंगलम श्री मदात तप भूवि विनंती ए भूदा जना। प्रभु तुम्हारी लीला कथा अमृत स्वरूप है, ताप तप्त जीवों के लिए तो वह जीवन स्वरूप है, यानी महात्माओं ने उसका गुणगान किया है, वह पाप कुंज को हरने वाली है, उसके श्रवण मात्र से परम कल्याण होता है, परम मधुर तथा सुविस्तृत है। जो तुम्हारी इस प्रकार की लीला कथा का गान करते हैं, वास्तव में वे इस भूतल में भी सर्वश्रेष्ठ दाता है। इन शब्दों के साथ मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि श्री महाराज जी भी भगवान के अंश अवतार हुए हैं। उनकी लीला, उनके गुण कर्म सब कुछ दिव्य है। उस दिव्य लीला को भी हम पढ़े, सुने और जाने तो हमारा उद्धार अवश्य होगा, हमें प्रभु प्राप्ति अवश्य होगी। इसलिए हम प्रतिदिन श्री महाराज जी के कोई न कोई नया प्रसंग लेकर आपको सुनाते हैं। तो आज मैं आपको एक और कुछ प्रसंग सुनाऊंगी छोटे छोटे। तो पहले हम गीता के श्लोक पर आते हैं कि गीता अध्याय 8 श्लोक 14 भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, अनन्य चेता सत्यम यो मां संगति नित्यशा तस्य हम सुलभा पार्थ नित्य योगिना। हे पीठानंदन, हे अर्जुन, अनन्य चित वाला जो मनुष्य मेरा नित्य निरंतर स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात उसको सुलभता से प्राप्त हो जाता हूँ। तो श्री महाराज जी भी गीता इसी श्लोक पर मुझे लगता है कि ज्यादा बल देते थे, हमें विचार देते थे कि हाथों से कर्म करो और अपने मन को हमेशा उस भगवान में लगाए रखो, ताकि अगर हम अपना मन नित्य निरंतर भगवान में लगाएंगे तो मैं मतलब भगवान अपने को कह रहे हैं कि मैं ऐसे योगियों के लिए, योगी वो होता है जो सतत भगवान के कार्य में लगा रहता है, उसे योगी कहते हैं, तो मैं उसे सुलभता से आसानी से प्राप्त हो जाता हूँ। तो हमें श्री महाराज जी तथा गीता के श्लोक से ये लेना चाहिए, ये उपदेश लेना चाहिए कि हमें सदैव अपने चित्त को भगवान में लगाए रखना है, उसका स्मरण करना है, उसके विषय में जानने का प्रयत्न करना है और फिर भगवान सुंदरता से आसानी से ही प्राप्त हो जाते हैं। इसी के साथ गीता अध्याय 6 का एक और श्लोक मुझे याद आता है और मुझे वो प्रिय बहुत है, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम चामरी पश्यति तस्य नाम न पनश्यामि सा चा मे न पनश्यति। जो भक्त मुझ में देखता है और मुझे ही देखता है और मुझ में सबको देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। प्रिय भक्तजनों, कितना आसान है, करने में भले डिफिकल्ट है, कठिन लगेगा, लेकिन अभी अगर हम सुने और सुनाए पढ़े तो लगता है तो बहुत आसान है। जो भक्त सब में मुझे देखता है, सब में जीव मात्र में, छोटे से कीटाणु से लेके बड़े से बड़े अजगर तक, राजा से लेके अंक तक, स्त्री से लेकर पुरुष तक, बूढ़े से लेकर बच्चे तक, सब में जो मुझे देखता है भगवान को देखता है। सियाराम में सब जगदारी और मुझ में सबको देखता है और विराट रूप देखे अगर भगवान तो उसमें सब कुछ दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं कि देखो सब कुछ मेरे में है, मेरे मुंह में आते हैं एक मुंह से मैं निकलता हूँ, दूसरे मुंह से मैं निकालता हूँ। ऐसे भक्त को मैं कभी अदृश्य नहीं होता, मतलब मैं उसकी आंखों से ओझल नहीं होता, उसके मन से दूर नहीं जाता, मैं सदैव उसके हृदय में स्थित रहता हूँ। तो ये भक्त जनों, हमें ये प्रथम करना चाहिए कि हम सब ने भगवान के दर्शन करें, बार बार कोशिश करें कि हमारे पास जो आया है उसी में भी वही परमात्मा है जो मेरे भीतर है। इस प्रकार हमारी साधना बड़ी आसानी से आगे निरंतर अग्रसर होती रहेगी और एक दिन ऐसा आएगा कि हम बड़ी आसानी से भगवान की गोद में जा बैठेंगे। तो आज का प्रसंग मैं लिखती हूँ, जगदीश भाई जी के साथ संबंधित है। 26 अप्रैल को जगदीश ने अपने इकलौते बेटे के मुंडन संस्कार यही मंडल में किए। 3 मई को दिल्ली से श्रीमती मुनसी ने बच्चों के लिए बढ़िया सुंदर पुस्तकें भेजी तथा श्री महाराज के लिए एक चांदी की जेब भरी, जिसे देखकर श्री महाराज शिशुवत खुश हो रहे। हमें श्रीमती निवेश के विषय में पहले जाना है। उस वृद्ध महिला में कितनी श्रद्धा थी, कितना महाराज से प्रेम था। देखो अभी उन्होंने दिल्ली से महाराज जी के लिए चांदी की एक जेब भरी है, जो उसके भाई विनोद मल्होत्रा सऊदी अरब से लाए थे। एक और घड़ी उन्होंने मेरे लिए भी भेजी है। श्री महाराज के लिए खादी के कपड़े भी भेजे हैं। 24 मई को एक अन्य महिला भक्त श्रीमती आदर्श भी दिल्ली से आई है। वे मंदिर की मूर्तियों के लिए सुंदर सुंदर वस्त्र लाई है। श्री महाराज जी उनके आदर सत्कार में बड़ी ही रुचि लेते हैं। श्री महाराज जी श्रीमती आदर्श और उनके बच्चे तथा उनके पति के प्रति बहुत ही स्नेह भाव से निभाते हैं। श्री महाराज सभी के साथ हृदय से प्रेम भी करते हैं और जो मंदिर मेरे लिए कुछ श्रद्धा पूर्वक लाता है उसके प्रति तो वह जैसे स्नेह ही उधेर देते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, हृदय और केवल हृदय के द्वारा संसार के मर्म को छुआ जा सकता है। अतः इस युक्ति का आप अर्थ तो समझ ही होंगे कि हमें अपना हृदय बड़ा विशाल बनाना चाहिए और सबको हृदय से प्रेम दे करके अपना बना लेना चाहिए। श्री महाराज का उदार हृदय सबके लिए सर्वत्र समान भाव से खुला रहता था। वे अपने प्रेम से सबको बांध लेते थे। जो उनके पास एक बार आता वह सदा उनका ही हो जाता। श्री महाराज ने खुले हृदय विवेक और सद्भावना द्वारा ही कुल्लू की जनता को अपनी बाहों में समेट लिया है। भारत और विश्व भी श्री महाराज की ओर देख रहा है। विश्व को भी श्री महाराज जी श्री माँ देवी तीर्थ का निर्माण करके एक विशाल वट वृक्ष दे गए हैं, जिसकी छाया में सदियों तक आने वाली पीढ़ियां बैठकर विश्राम करेंगी। श्री महाराज जी कहा करते थे, जो मनुष्य हिंसा करता है वह तो संसार में अपने प्रति बैर ही बढ़ाता है। उनका अपना जीवन प्रेम में था, जिसकी नींव अहिंसा थी। अहिंसा और प्रेम द्वारा श्री महाराज ने शत्रुओं को भी अपना बना लिया था। श्री महाराज कहते, तुम अपना मन अहिंसा तप त्याग और संयम में लगाओ और कुछ मत करो। 5 जुलाई सोमवार को गुरु पूर्णिमा का उत्सव मनाया गया। श्री महाराज ने सब भक्तों को मिलजुल कर रहने की शिक्षा दी है। 8 जुलाई को श्री नरेंद्र की अस्वस्थ माता जी को श्री महाराज की आज्ञा से मंदिर में लाकर रखा गया, ताकि वह स्वस्थ हो जाए। उन दिनों मंदिर में सेवा का सारा कार्यभार मेरे जिम्मे ही था और श्री महाराज जी गुफा के ऊपर वाले भाग में सीमेंट टाली लगाने का कार्य करते थे। मजदूरों को मैं चाय बना के रखती तो सिर्फ श्री महाराज जी आकर चाय ले जाते। उन दिनों भोजन पकाने का तथा दूसरे जितने भी कार्य थे वो मेरे जिम्मे ही थे। धीरे धीरे नरेंद्र जी की माता का स्वास्थ्य भी सुधरने लगा। 30 अगस्त 1982 को जर्मनी से मेल आए, श्री महाराज मंदिर में ही है। मेल और राजन सूदन के पास पहुँचे, श्री महाराज मेल से मिलकर बहुत प्रसन्न हुए। मेल जर्मनी से एक दूर भी फ्लैश वाला एक छोटा कैमरा, दो जोड़े जूते और कुछ घड़ियां लाए हैं। श्री महाराज ने सब वस्तुओं को एक एक करके देखा और बाल रुचि दिखाई। मेल जर्मनी में रंग करने का कार्य करता है, अतः यहाँ शिव मंदिर में उसने नीला रंग पेंट करने का उत्तरदायित्व ले लिया। जैसे श्री महाराज के प्रेम में भाव में डूब चुका था, श्री महाराज जी के रंग में स्वयं ही वो रंग चुका था। मंदिर की दीवारों को उसने नीले रंग से रंग दिया। गुरुवार 12 अगस्त को जन्माष्टमी मनाई गई। उन दिनों हिमेल और श्री महाराज दोनों भंडार गृह में ही सोते थे। श्री महाराज हिमेल के लिए थाली में भोजन डालते और प्रेम पूर्वक उसे खिलाते। एक बार उन्होंने स्वयं डोसे पकाकर हिमेल को खिलाए। श्री महाराज को दक्षिणी भारत के खाद्य इडली डोसे बहुत पसंद है, इसलिए मंदिर में इडली पात्र भी मंगा रखा है। एक दिन इडली भी बनाई गई। श्री महाराज ने बड़े प्यार से हिमेल तथा अन्य भक्तों को इडली खिलाई। 19 अगस्त के आसपास ध्वजा स्थल में रंग करने का कार्य आरंभ हुआ। इन दिनों श्री महाराज हिमेल को ऐसे प्यार से भोजन खिलाते हैं मानो माँ बच्चे को खिला रही हो। सभी गर्मा गर्म पकौड़े खिलाते, सभी डोसा पकौड़े खाकर तो हिमेल ने कहा, मैंने ऐसे स्वादिष्ट पकौड़े जीवन में पहली बार खाए। इन दिनों की एक घटना वर्णनीय है, ये घटना ईमानदारी के विषय में है। श्री हिमेल ने अपने पैसों की थाली मतलब मनी पर्स जेब में डाला हुआ था और वह शहर चलेंगे, परंतु शहर जाकर देखा तो उसने 400 मार्क कम हो गए थे, गुम हो गए थे। वह उसी समय लौट आए और भंडारे में ढूंढने लगे। श्री महाराज ये समाचार सुनकर दुखी हुए और कहा कि हिमेल को मंदिर के खजाने से 1200 रुपए दे दिए जाएं। दूसरे दिन प्रातः मंदिर में काम करने वाले कुली काम पर पहुंचे। एक कुली ने जर्मन मास्क निकाले और श्री महाराज जी को देते हुए कहा, बाबा जी कल शाम को जब हम यहाँ से छुट्टी करके गए तो रास्ते में ये नोट एक और पड़े मिले, मैंने किसी को नहीं बताया, आपके पास लाया हूँ। श्री महाराज जी ने उसमें हिमेल को बुलाया और उसे सब बताया। हिमेल ये सब देखकर चकित हो गया, उसने 100 रुपए उस कुली को इनाम दिए। श्री महाराज जी ने कहा, देखा माता का चमत्कार। इस प्रकार श्री महाराज हिमेल के प्रति वात्सल्य भाव रखते और प्रसन्नचित रहते थे। हिमेल अब शीघ्र जर्मनी चला जाएगा, उसके लिए वस्त्र एवं पश्मीने की चादर मंगवा कर श्री महाराज जी ने उसे भेंट की और गले मिलकर भावभीनी विदाई दी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज इस प्रसंग को विराम देती हूँ। जय माता दी, गीता माँ।